जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 पर 15 सितंबर 2016 को इस्कॉन मीरा रोड मुंबई में दिया गया।
गोपी जन वाला भाधारे नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
सभा का हार्दिक स्वागत। सुनना चाहते हो इस श्लोक को?
ये दस स्कंद के प्रथम अध्याय का 13वां श्लोक।
आप में से कितने बंधु की देखो मैं स्मार्टफोन में, और स्मार्टफोन में प्रॉपर्ट के ग्रंथ भी है। मैंने देखा कि लोगों के उच्चारण के समय कई भक्तों ने मोर भी नहीं देखा, अपने स्मार्टफोन से लोगों को पढ़ा। तो आज टेक्नोलॉजी की कृपा से अब प्रॉपर जी के सारे ग्रंथों को अपने जेब में उठा सकते। अभी किसी ने सोचा था एक दिन आएगा कि प्रॉपर जी ऐसी किताबों को जेब में उठा सकते। टेक्नोलॉजी के द्वारा आप चाहो तो सारे ग्रंथों को जेब में उठा सकते। हमारे कई भक्त हैं सारे विश्व में, तो इसका पूरा लाभ उठाते हैं। टेक्नोलॉजी का आप दुरुपयोग कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो भक्ति बढ़ाने के लिए। तो कई भक्त क्या करते हैं, जब भी मौका मिले दिन में अवसर में भगवत पढ़ना शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी का कोई नुकसान नहीं है, केवल उसका दुरुपयोग भी होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत जी कह रहे थे कि भौतिकवादी व्यक्ति टेक्नोलॉजी की स्थापना करते हैं और भक्त उनका उपयोग करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। आज जो आपने श्लोक सुना, इस श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा है? महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। परीक्षित महाराज जैसे तात्पर्य में कहा गया है, जंगल में थे ऐसे लोग परीक्षित महाराज थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे पृथ्वी के साथ में भगवान के भक्त भी थे, राज ऋषि। अब अंदाजा लगाओ जब शासन कोई राजा करे जो संत भी है, उस मान की प्रजा कितनी सुखी होगी। प्राचीन समय में समाज में शासन किया जाता था राजाओं के द्वारा, तो ऋषि भी थे, वो प्रजा को अपनी संतान समान मानते थे। तो परीक्षित महान परीक्षित शब्द का अर्थ किया है, ये खोज रहा है। जब वो माता के घर में थे उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था, एक पल के लिए उनसे एक पल में ऐसा आनंद अनुभव किया कि जिंदगी भर जिस व्यक्ति को ये देखते थे, ये सीमा करते थे, लेकिन वैसा चेहरा तो नहीं है जो मैंने माता के घर में देखा। ईशान का नाम था। तो पंडित महाराज जंगल में थे, प्यासे थे, पानी खोल में ऋषि की कुटिया में पहुंचे। ऋषि धर्मा का चिंतन कर रहा था। उस ऋषि ने साधक पर देखा, राजा ने था अपमान सूच। शास्त्र में कहा गया है अगर कोई शत्रु भी आपके घर में आए तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। कैसे? प्रसाद के साथ। प्रसाद के साथ स्वागत नहीं कर सकते, तो जल के साथ। जल के साथ भी स्वागत नहीं कर सकते, तो मीठे शब्दों के साथ। बैठने का स्थान दीजिए। बाबा जी की इच्छा थी कि हर व्यक्ति हमारे मंदिर में आए, उन्हें बिठा कर गर्म प्रसाद खिलाए हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप हमने खिचड़ी खिलाना तो शुरू कर दिया। पहला कदम एक दिन शायद पूरा रूप से जा रहा। तो समीकरण ऋषि ने बिल्कुल देखा ही नहीं राजा की तरह। राजा ने अपमान महसूस किया और देखा तो उसे गले लगा लिया। ऋषि का बेटा खेल रहा था, तो उसे देखा कि राजा पिता की कुटिया से निकल कर तेजी से चल के जा रहा है। तो अंदर गए देखने के लिए क्या चर्चा की राजा ने पिता के साथ। उन्होंने क्या देखा? नरवासाम पिता के मंदिर में। तो बेटे ने इसका अपमान महसूस किया और राजा को श्राप दिया। अगर परीक्षित महाराज चाहते तो सरलता से इसका विरोध कर सकते थे। तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया, भगवत का संदेश ग्रहण करने के लिए। भगवान की इच्छा थी भगवत का संदेश सुनाया जाए, पूरे महत्व समाज के नाम के लिए। क्योंकि भगवत का संदेश है ये सबसे उत्तम ज्ञान है। व्यास ने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना कर दी थी, उनके सार को प्रस्तुत किया था महाभारत की रचना की। जब भी उन्हें लग रहा था उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है, जब विचार कर रहे थे क्या है कमी, उसी समय में कौन पहुंच गए हमेशा तीन स्थान पर पहुंच जाते हैं। केवल शुद्ध भक्ति पर वर्णन किया, फिर उन्होंने हमें श्रीमान भगवत का ज्ञान दिया। सारे मेरे साहित्य का सबसे पकवा फल है, ये पकवा फल गुरु परंपरा द्वारा आ रहा है। तो अपनी ध्यान देते हैं तो अपनी कह दीजिए कोई फल तो कोई पेड़ की छोटी से ऊपर से फेंकेगा नीचे, नीचे पहुंचने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा पहुंचाया जाए नीचे तो कैसा रूप पहुंचाएगा। ये संदेश जो है हमें गुरु परंपरा द्वारा स्वीकार करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को श्राप दिया था। क्या था श्राप? साल के पश्चात उनका अंत आ जाएगा। जब साधारण व्यक्ति को सूचना मिलती है अंत आने वाला है हम घबरा जाते हैं। सच बात तो बड़े समाज को भी घबरा है। उन्होंने
और जल पीना दोनों ही बंद कर दिया था। और वैसे तो देखा जाए आपको पियो नहीं खाओ नहीं बारह तो तकलीफ तो होगी, तो वो तकलीफ नहीं महसूस कर रहे थे। क्यों क्यों? क्योंकि सुबह में स्वामी के कर्म से तो कृष्ण कथा अमृत अनुभव कर रहे थे। इसी अध्याय में प्रेक्षण महाराज ने सुबह में स्वामी जी ने निवेदन किया कि कहा कि आपके पास पूरा ज्ञान है कृष्ण भगवान के विषय में और हमें ज्ञान दीजिए। तो कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाए ये होना चाहिए हम सब का भाव। और अगर हम कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो किस कार्य से बचेंगे तो ज्यादा से बचेंगे। शास्त्रों में बार बार कहा जाता है श्रवण के तीनों कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। अगर हम कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो बहुत ही आकर्षण करेगा। तो हमारी आज के श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं कि कृष्ण कथा में रुचि लोगे तो बहुत ही आकर्षण घटेगा। और प्रभु जी आगे ये भी कहते हैं भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि तो भौतिक आकर्षण कैसे घट रहा है। जैसे कि जब चर्चा की जाती है कि नियमों का पालन करने इत्यादि एवं आश्चर्य चकित हो जाते कैसे संभव है। ये संभव है क्योंकि ये संभव है क्योंकि कृष्ण कथा है उसी पशु। तो हम भक्तों का ये प्रयास करना चाहिए कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाए। इस विषय में भागवतम के प्रथम स्कंध में कहा गया है नास्ता प्रवेश अवधेशु भागवत से भगवती पुरुषोत्तम भक्ति प्रारंभ नहीं थी। यही विचार इस श्लोक में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रवेशन अगर हम ध्यान पूर्वक भागवतम के संदेह को सुनोगे तो हृदय में जो बहुत ही आकर्षण है धीमे धीमे कम होते जाएगा। यही संदेश हमारे शास्त्रों में बार बार दिया जाता है कि कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। भागवत में आप पढ़ते हो इस दसवें श्लोक में भगवान की लीला कैसे भगवान प्रकट हुए ये वासुदेव देव की विवाह हुआ था और उनके भाई अपनी बहन को घर तक छोड़ने जा रहे थे तो आकाशवाणी द्वारा सूचना प्राप्त हुई हे मूर्ख तुम्हारी बहन का आठवा पुत्र तुम्हारे नृत्य कारण कर्म था असूय का भाव होगा। जो सुरभाव के व्यक्ति होते हैं वो केवल अपना स्वार्थ का ही सोचते हैं, चाहे समाज धर्म में जाए उनको थोड़ा लाभ है तो उसका कोई कार्य करे। जैसे आज के कलयुग की सरकार है सारे विश्व में कई देश है जिन्हें आनंद आता है ये देखकर कि युद्ध हो रहा है टेंशन है चिंता है। क्योंकि अगर युद्ध होते रहेंगे टेंशन रहेगा तो सब हथियार खरीदेंगे। हथियार तो सबसे बड़ा व्यापार बन गया। तो जो शुद्ध भाव के व्यक्ति हैं तो केवल अपने स्वार्थ नहीं सोचते, कंस तैयार हो गए थे वर्क करने के लिए, ताकि वासुदेव ने बड़ी होशियारी के साथ कहा, तुम्हें डर तो है किसका, अपने बहन के हाथ में बेटे का, बहन का वर्क करने से क्या लाभ, हर जो बेटा पैदा होगा नाम है तुम्हारे पास, तुम्हें अगर शक हो तो बुद्धि से मान लेना। कांत ने यह स्वीकार कर लिया और पहले से बच गया, और जिसके पश्चात बड़े भाई को प्रकट हुए। तो आचार्य ने कहा है अगर आप भगवान को बिठाना चाहते हो हृदय में, पहले हमें हमारे हृदय को शुद्ध बनाना है, और ये अच्छे मालूम है, ये भी भाव है कि वृक्षे अनर्थक है, हाथ क्रोध मत मतलब अनर्थक है, इन्हें हमें हृदय से निकालना पड़ेगा, फिर भगवान आकर हृदय में बैठेंगे। हम इन्हें कैसे निकालोगे, कृष्ण कथा के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से निकाल सकते हो। इसी अध्याय में शुक्र गोस्वामी कहते हैं यही है एक औषध भी। तो परम भगवान का प्रकट होना प्रकट होना दोनों ही दिव्य अंग है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म चार में, तो भगवान का प्रकट और प्रकट होना दोनों ही दिव्य अंग। भगवान जैसे प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए, उदाहरण बच्चे के समान कैसे प्रकट हुए, अपने दिव्य रूप में चार हाथों के साथ पूरा शरीर सजा हुआ था, गहनों के साथ, मणियों के साथ, हीरे के साथ, एक मणि है बैठी मणि, उसे आप भौतिक जगत में कहां भी खरीद नहीं सकते, अपराध में नहीं खरीदना है, जो वैकुंठ धाम जहां उसका रंग हर पल पर होते रहता है। तो भगवान प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, तो माता पिता को भय था क्या तो सूचना मिल जाएगी क्या, भगवान प्रकट हो चुके हैं, माता पिता कहने पर क्या किया, नारायण बच्चे का भगवान अचिंत्य है, किसी को उनके लिए कोई कार्य भी असंभव नहीं है। और उनके पिता इतने प्रसन्न थे ये देखकर कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, उन्होंने मन ही मन में 10,000 सजीव गायों को ब्राह्मणों को क्या किया, दान दे दिया, क्योंकि वो जेल में थे कैदी थे। तो मन ही मन में 10,000 सजीव गायें दान दे दिया। प्राचीन समय में धन मापा जाता था ये देखकर कि कितनी गाय है, कितनी खेती है, आज हम देखते हैं कौन सी मुद्रा निकल आ रहा है, कौन सी इलाके में मकान है, कौन सी कंपनी के कपड़े पहनता है, टीयर कार्ड है मेरा, तब मानते ही धनी व्यक्ति का। प्राचीन समय में देखा जाता था कितनी खेती है, कितनी गाय है। उदाहरण के लिए नंद महाराज के पास 9,00,000 गाय थी, हर गाय सजी हुई थी, गहनों के साथ, उन्हें कई गायें थी जिनसे सुगंधित दूध भी निकलता था। आप कभी अंदाजा कर सकते हो आज गायों से सुगंधित दूध मिले आएगा तो सुगंध आना है तो फ्लेवर डालना पड़ता है। तो कुदरती गायों से सुगंधित दूध आता था। उन्होंने दूध क्यों आता था क्योंकि उन्हें सुगंध खास के आया जा रहा समयों के नाम तो धर्मराज ने मनी मन में 10,000 गाय दान में दे दी किसे शुद्ध ब्राह्मणों को दान देना है तो शुद्ध ब्राह्मणों को देना चाहिए ये नहीं नाम के ब्राह्मणों को दान अगर 30 लाख में जाए तो 1 लाख है और 10 लाख में जाए तो 1 लाख नहीं शुद्ध ब्राह्मण के लिए। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहां की आप सेवा नहीं कर सकते तो हम अन्य की सेवा कर सकते और इस विषय में बाकी रसामृत सिंधु जिसकी रचना दीपक स्वामी जी ने की चैतन्य महाप्रभु ने दीपक और सनातन को खास आदेश दिया था। पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वयं भक्ति की शिक्षा दी फिर दीपक और सनातन को आदेश दिया इस शिक्षा के आधार पर ग्रंथों की रचना करने के लिए और मंदिरों का निर्माण करने के लिए और उन स्थानों को खोलने के लिए जहां की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। आया जब वृंदावन जाते हो ब्रजमंडल परिक्रम करते हो परिसर से आप पहचान लेते हो ये लीला यहां भी दी गई लीला भी दी गई ये संभव है क्यों कि गुरु संघियों ने पूजा बड़े प्रयास के साथ और स्थापित किया ये लीला यहां भी दी गई। जैसे जब आप नर्मदे परिक्रम करते हो तो आप पहचान पाते हो किसके स्थान में कौन सी लीला दी गई थी ये संभव है क्योंकि भक्ति के नाम सरस्वती ठाकुर ने प्रयास करके खोजा वहां पर उनकी लीला जो बीती है काम में दी है। तो जैसे आता है मन मन में नाम दे दिए तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो यहाँ की शारीरिक सेवा नहीं कर सको मन की सेवा करो। रूप गोस्वामी ने अजीर सिंधु में बड़ा छोटा आदमी है एक समय दक्षिण भारत में एक सज्जन कथा कर रहे थे। कथा करते समय यही संदेश कथा कर ले दिया कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो यहां शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर सके मन के द्वारा सेवा कर सके। ये ब्राह्मण बहुत गरीब था तो इसके मन में एक भाव था सदा भगवान के लिए महल बनाना। अपने आप रहता था कुटिया में भगवान के लिए महल जैसे हमारे जो दोस्त स्वामी हैं वो रहते थे अलग अलग पेड़ों के नीचे जीवन को स्वामी सबकी प्रेरणा से सारे प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन के बने। तो प्रभुपाद जी भी कहते थे प्रभुपाद जी कहते थे मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ तो अगर सुंदर मंदिर बनाएंगे तो हजारों लोग आएंगे दर्शन के लिए। प्रभुपाद जी ने प्रयास करके राम का मेरा बड़े भी अनुभव है, सबसे मंदिर जाना है, दिन से दिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है। आपके गुरु के मंदिर में लोग ऐसी हजार लोग आते हैं, तो मंदिर द्वारा आप दूसरों को आकर्षित कर सकते। तो ये ब्राह्मण गरीब था, उसकी हृदय में इच्छा थी भगवान के लिए महल बनाया जाए। फिर इस ब्राह्मण ने 80 मार्बल का बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया, राधा कृष्ण की मूर्तियों बनाई सोने की, और उसने बहुत धूमधाम से भगवान की सेवा शुरू कर दी। जैसे हमारे मंदिरों में आज आरतियां होती हैं सुबह से रात तक, ये ब्राह्मण रोज स्वयं आठ आरती करता था, रोज भगवान का श्रृंगार केले, रोज भगवान का भंडारा बनाता था केले। और भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्नान में जाकर उनका जल आता था मन का अभिषेक करने के लिए। जो ब्राह्मण दक्षिण भक्त हैं वो जानते हैं भगवान को रोज स्नान करवाते हैं। आप रोज स्नान करते हो तो भगवान नहीं करते हैं, भगवान की ये अभिषेक करने के लिए जब आप चरणों में पीते हो ये क्या है भगवान का अभिषेक। भगवान का स्नान कराने के लिए अलग अलग तीर्थ की नदियां हैं, वहां से जल लाया जाता है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा। आप लोग जाते हैं नदी में पानी लाने के लिए, हम लोग जाते नहीं है, पर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी द्वारा आपका मीरा और मुंबई का पानी गंगा जल बन जाता है। जैसे कि पौधे की टेक्नोलॉजी से गर्मी में सर्दी हो जाती है, सर्दी में गर्मी, आप दोपहर वगैरह जाओ इतनी गर्मी है बाहर आपको महसूस ही नहीं होता, घर से एयर कंडीशन है, मोटर एयर कंडीशन है, घर एयर कंडीशन है, बाजार एयर कंडीशन है, महसूस ही नहीं होता। सर्दी में हीटिंग वाला गर्मी पैदा कर देते, उसी प्रकार मंत्र के उच्चारण से साधारण मुंबई का जल गंगा जल बन। तो ये जो ब्राह्मण था रोज सोने के बर्तन बनाए थे, रोज जाता था अलग अलग तीर्थ नदियों में जल आने के लिए भगवान का अभिषेक करके। इस प्रकार कई साल बीत गए, नियमित रूप से ये ब्राह्मण रोज भोजन भगवान के लिए आरती कर रहा था सब मन ही मन में। पर एक दिन उसने भगवान ने खीर बनाई, खीर जैसे आप जानते हो पहले गर्म बनती है, फिर ठंडा होने पर भगवान को भोग लगाया जाता। तो ये देख रहा था अपनी उंगली में अंदर डालकर खीर ठंडी हुई कि नहीं, जैसे उसने उंगली अंदर डाली उसकी उंगली जल गई, सच में जल गई, तो आश्चर्य हो गया था। ब्रह्मा जी लीला देख रहे थे लक्ष्मण के साथ, ब्राह्मण आश्चर्य हो गया, भगवान हंसने लगे। लक्ष्मी ने पूछा क्यों हंस रहे हो, भगवान ने उत्तर दे दिया ध्यान भेजा ब्राह्मण को कान आने के लिए अपने नाम बनाने के लिए। ये कथा सुनाई गई है ये स्थापित करने के लिए, अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ की किसी कारण शारीरिक बंधन के कारण आप कुछ सेवा नहीं कर सकते, मन में कर सकते हो। भगवान कहते क्या मंगल भाव मन लो आप सोचो अगर मन ही मन में सेवा करेंगे ये सुविधा है केवल या ऐसी स्थिति हो या शरीर किसी कारण सेवा नहीं कर सकते, पर सदा भाव रहना चाहिए आजादी कृष्ण का। तो परीक्षित महाराज कृष्ण कथा में रुचि दे रहे हैं, कृष्ण कथा के विषय पर बल दे रहे हैं और आप इस विषय के ऊपर रोज सुनते हो। आगे जैसे कि नर्मदा भक्ति आनंद होती है कैसे श्रवण कहते हैं और कृष्ण कथा में अंतर है एक ही विषय। शरणम के दिन का मतलब है भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान की कथा का शरण करना और चर्चा करना। तो हम भक्तों को कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रजल्प से बचना चाहिए, धार्मिक चर्चा बढ़ानी चाहिए। धार्मिक चर्चा का ऐसा प्रभाव है अब दिन रात सुनोगे थकोगे नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप भगवद गीता को रोज पढ़ो, कभी आपको ऐसे लगेगा क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूं। भगवद गीता को रोज पढ़ो आपको रोज नया पढ़ना महसूस होगा, कभी ऐसे नहीं लगेगा कि आप दो बार पढ़ चुके हो तो तीसरे बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, खास करके विदेशों में लोग पूछते हैं तुम लोग एक ही नाम का उच्चारण करते हो दिन रात थकते नहीं हो? नहीं थकते क्यों? नाम चिंता में कृष्ण चेतना भगवान के नाम है भगवान से अपने भगवान के नाम भगवान है। उसी प्रकार भगवान के लीला भगवान के उपदेश में भगवान ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आप पढ़ते हो जब विश्वदेव श्री को त्याग रहे थे पर भगवान स्वयं वहां उपस्थित थे पांडव भाइयों के साथ। विश्वदेव को ये सुविधा थी कि वो चुन सकते थे अपने मृत्यु का सुविधा, तो उनका सौभाग्य था कि परम भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने श्री को त्याग। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस लीला के विषय में कहते हैं कि अगर आपका सौभाग्य हो श्री त्यागते समय अब गीता भागवत का संदेश सुन रहे हो या हरी नाम सुन रहे हो तो आपको वो ही लाभ मिलेगा जो कि विश्वदेव को प्राप्त हुआ भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हुए। तो इससे क्या संदेश मिलता है हमें कि भगवान के उपदेश में कोई अंतर नहीं। जब आप भगवान गीता पढ़ते हो धारण से तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि साधारण मिलता है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा परम भगवान बोल रहे हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो ये नहीं कि इस संदेश में भगवान अंतर है, भगवान अब प्रकट हो चुके हैं पर अभी लीला उपदेश छोड़ चुके हैं जिसमें श्रीमद् भागवतम। तो कृष्ण कथा में रुचि का अर्थ है कृष्ण भगवान उनके भक्तों की लीलाओं में, जैसे कि उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ आध्यात्मिक विषय की चर्चा करते थे सबसे अधिकतर चर्चा करते थे प्रहलाद महाराज की कथा महाराज की कथा के भगवान के दास लीला के ऊपर नहीं महाराज की कथा और प्रधान महाराज प्रहलाद महात्मा वो तो भगवान के भक्त है। ऐसे में कल कहा चैतन्य महाप्रभु जब गोपी 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 भाव प्रकट कर रहे थे गोपियां तो भगवान के भक्त है। तो जब कृष्ण कथा की चर्चा की जाती है उसका अर्थ है भगवान अपने भक्तों के भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ये कहे कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है वो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त। भगवान भगवान का गुणगान जब आनंद आएगा तब उनके भक्तों को भी आदर दो। कई बार हम देखते हैं वो कहते हैं हाँ आज जब भगवान का दर्शन नहीं आएंगे हम किसी भक्त से बात ही करना चाहते हैं तो ये भाव ठीक बात है। तो परीक्षित महाराज में क्या कह रहे हैं भौतिक भूख और भौतिक प्यास से वो बच पाए क्यों क्योंकि सुखदेव गोस्वामी द्वारा गमन मुक्ति द्वारा जो भागवत की रचना हो रही थी उसके द्वारा उन्हें ऐसी संतुष्ट महसूस हुई कि बहुत ही भूख और प्यास दूसरों से अनुभव ही नहीं कर पाए। गोवर्धन लीला में आप क्या पढ़ते हो भगवान गए थे पिता के पास पिता के पास पिता क्या कर रहे थे इंद्रियों की तैयारी। भगवान ने पूछा पिता ये क्या क्या तैयारी हो रही है पिता ने उत्तर नहीं दिया। पिता बेटे ने फिर कहा मित्रों में तो कोई बात हम छुपाया नहीं ज्यादा पिता ये आप क्या कर रहे हो मैं इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहा हूं हम किसान हैं निर्बल हैं इंद्र की कृपा के ऊपर किसान जो है वर्षा पर निर्भर रहते हैं। भगवान के कहने पर इंद्र यज्ञ का भाव छोड़ दिया नंद महाराज और दूसरे किसानों ने इसका अपमान इनको सबक सिखाने लगे ब्रिटवासियों को इनकी ऐसी हिम्मत हर साल इंद्र यज्ञ करते थे ये साल रुकवा दिया है छोटे लड़के की कहने पर उन्होंने समुद्र का बादल भेजे वृंदावन के ऊपर और पानी का बारिश का हर बूंद जो गिर रहा था खंभे से भी भारी था सजा इतनी तेजी से बारिश बरसने लगी तो सारे ब्रजवासी घबरा गए और जो भक्त है सुख में और दुख में एक ही स्थान के शरणागत होता है तो सारे ब्रजवासी भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान ने जैसे जानते हो गोवर्धन पर्वत को छाता के रूप में उठाया तो सारे ब्रजवासी भगवान के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। गोवर्धन पर्वत उठाया पहले जब आप वजन उठाते हो तो थोड़ी देर में बाएं हाथ में रखते हो फिर दाएं हाथ में रखते हो फिर बाएं हाथ में रखते हो भगवान तो बिल्कुल स्थिर रूप से बाएं हाथ के छोटे मुंडी नाखून के बल पर उठाया पर एक पर्वत बिल्कुल हिला नहीं। पर कहने का तात्पर्य यह है सारे ब्रजवासी भगवान का चेहरे को देख रहे थे और पूरे एक हफ्ते के लिए ना न प्यास लगी भूख लगी छह बजे देख रहे हैं ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो वही संदेश इस श्लोक में दिया जा रहा है। कृष्ण मां कह रहे हैं क्योंकि मैं बड़े ध्यान से दूसरों के द्वारा मंत्रों के द्वारा कृष्ण कथा की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं बौद्धिक पूर्व अभ्यास से विश्राम करती हूँ। तो भौतिक संसार में हम सबको भूख और प्यास है, सच बात। भूख और प्यास एक विषय की है, वो विषय है इंद्रिया तृप्ति। हम भूखे हैं, हमें चाहिए इंद्रिय तृप्ति की सुविधा है। हम प्यासे हैं, हमें चाहिए इंद्रिय तृप्ति की सुविधा है। और चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में सातवें में प्रहलाद महाराज के प्रसिद्ध श्लोक की उपयोग करते हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं गुणात्मा चरण चरण, आपने एक दो बच्चा अपने खा लिया कुछ, फिर प्रयास करते हो खाने के। तो हम सब में यही सब इंद्रिय तृप्ति के कार्य लाखों बार हम कर चुके हैं, पर हम सोचते हैं अगले कदम में हमें कार्य में संतुष्टि प्राप्त होगी। लाना कहते हैं हे मूर्ख व्यक्ति, समय का दुरुपयोग मत करो, चाहे तो कितना भी प्रयास करो उतना ही सुख मिलेगा जितना तुम्हारे कोटा है, एक भी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो राम कहते हैं समय का दुरुपयोग मत करो, समय करो। तो भौतिक संसार में हम सब प्रयास करते रहते हैं। परसों हम कल यहाँ तक गाड़ी में आती मैंने एक बिल बोर्ड देखा, नई स्कीम आई है जियो 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 रिलायंस की, उसमें दिखाया था कई लाभ वो जियो जियो खरीद लगा। उसमें एक था 6,000 फ्री मूवीज, 6,000 मुफ्त की सिनेमा देख सकते हैं, 6,000 फिल्मों में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मेरे साथ जो लड़का था नहीं मिला, आजकल लोग ये लेते हैं फिल्मों के लिए, उन्होंने कोई बात नहीं करेगा सब तुमने देखी। तो मान लो अपने 6,000 फिल्मों को डाउनलोड कर भी लिया, एक फिल्म देखोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी देखोगे, कितनी फिल्में देख लोगे? क्या फिल्मों देखने से जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाएगा? तो हम इतने मूर्ख हैं, हम सोचते हैं 6,000 मुश्किल फिल्में मिल जाएंगी, मैं उन डाउनलोड करेंगे, रोज नई फिल्म देखेंगे, जो धनी लोग हैं वो घर में ही सिनेमा हॉल बना लेते हैं। मैं तब नया होम थिएटर बनाओ काफी ज्यादा नए होम थिएटर बनाते हैं, बाहर सिनेमा देखने जाने की जरूरत नहीं है, तो सिंधियों के सिनेमा हॉल में उनका कलर दोबारा हो गया, वो घर में बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, तो 6,000 नई फिल्मों को देखेंगे, बड़ा आनंद आए। तो आप 6,000 क्या 12,000 फिल्मों को भी देखते हो, आप बोली संसार में कभी अति सुख प्राप्त कर सकते हैं बोली भाई के द्वारा। तुम्हें बहुत महाराज याद की कथा है, जिनके पास पूरी सुविधा थी 10 सालों के लिए इंद्रिय तृप्ति की, अंत में उनका निर्णय क्या था, मैं काम वासना बकरी के समान था और इंद्रिय तृप्ति करता। तो शास्त्रों द्वारा हम भक्तों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और जैसे आज के श्लोक में शर्मा कह रहे हैं कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाओ, इसके द्वारा आप अपने आप को भौतिक भूख भौतिक प्यास से निकाल दो। हम सबके हृदय में भौतिक भूख है, काम क्रोध मोह भौतिक प्यास है। तो अगर आप इस समस्या का हल करना चाहते हो तो एक ही उपाय क्या है, वो कृष्ण कथा के कई रूप है। सबसे पहला प्रथम रूप है महामंत्र का उच्चारण करना, शरण हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, यह है सबसे महत्वपूर्ण अंग कृष्ण कथा का। यही नियम केवल कृष्ण कथा करें जप माला नहीं करें, महामंत्र का जप नहीं करें। महामंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हरि नाम है। कई भक्त है तो कीर्तन करेंगे शिक्षक घंटा जब भी करेंगे तो सबसे बेहतर है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब करना। यह कृष्ण कथा का एक रूप, कृष्ण कथा का एक और रूप है गीता के संदेश का अध्ययन करना, गीता के संदेश का कि जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि महाराज दशरथ जब किसी से मिलते थे ये नहीं कहते थे हाउ आर यू, वो पूछते थे व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन द जर्नी बैक टू गॉड है, पूछते थे क्या है गुरु जी वहां के नाम लौट दिखे कृष्ण में। तो गीता पढ़ो, गीता की चर्चा करो, आगे भगवतम भगवतम पढ़ो। ये नहीं रास लीला हम पहले पढ़ेंगे उनके भक्तों के विषय में, कैसे उनके भक्तों ने भगवान की सेवा की, कैसे भक्तों का संदेश है जिसका भाव। कल दोपहर के लेक्चर में हम राधा रानी जी की चर्चा कर रहे थे और हमने कहा कि राधा रानी जी को सबसे उत्तम भक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके मन में सदा निरंतर एक ही भाव रहता है भगवान की सेवा। इति सेवा करने के पश्चात उनके मन में यह भाव रहता है मैं सबसे निकम्मी भक्त हूँ, सारे भक्त अच्छे हैं तो मैं हूँ सबसे खराब सबसे कमजोर भक्त का भाव। तो भगवत पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवान की दीना में रुचि लो और इस प्रकार प्रयास करोगे भौतिक चर्चा से हम सब में प्रजल्पा की रुचि है, हम सबको प्रजल्पा की आदत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है और जीव की तपस्या क्या है। जीव की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, उच्चारण का चर्चा करो तो सत्य क्या तो सबसे उत्तम सत्य भाव है भगवान का संदेश। जीव द्वारा मिठास से चर्चा करो, जीव द्वारा विधि शास्त्रों का उच्चारण करो, ये है तो हम सभी कमजोरी यह है कि हमें प्रजल्पा की आदत बचपन से पड़ी हुई है ना। तो कभी जैसे कोई गहरी बीमारी हो तो गहरी बीमारी के इलाज करने में थोड़ा टाइम लगता है, सच डॉक्टर हम सबकी गहरी बीमारी क्या है, क्या है बचपन क्या है। तो एक दिन छोड़ना कई बार कठिन होना तो प्रयास करना चाहिए, तो प्रयास करोगे भगवान से आप प्रयास करोगे। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव हो दूसरा कोई माध्यम हो तो शास्त्र में कहा गया है प्रजापति की पूजा है कृष्ण कथा करो, हरिनाम का जान, शास्त्र के संदेश की चर्चा और प्रजापति करोगे ध्यान पूर्ति कर पाओगे। जैसे कि भौतिक समाज में हम सबका प्रयास रहता है कि मानव बीमार हो, कार कम हो जाए, अध्यात्मिक में हम रुचि दे रहे हो पर हमारा भाव न जाए कि हम अध्यात्मिक में आगे बढ़ पाए। हरे कृष्ण।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.